Iran Radio Podcast.
सितंबर 1916 में अल्जीरिया के मोगनिया गांव में एक ऐसे लड़के का जन्म हुआ जिस बारे में सभी को लगता था कि वो भविष्य में अपने पिता की तरह किसान बनेगा, लेकिन सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने कृषि से अपना रास्ता अलग करते हुए युद्ध, राजनीति और अर्थशास्त्र की ओर रुख किया। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 53वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। हम बात कर रहे थे अल्जीरिया के मोगनिया गांव में जन्मे लड़के की। लगभग 3 साल पहले, 60 साल के बाद, फ्रांस सरकार के राष्ट्रपति ने उसे श्रद्धांजलि देने के लिए उसकी याद में आयोजित हुई एक सभा में भाग लिया। हम 17 अक्टूबर की त्रासदी के पीड़ितों की बात कर रहे हैं। 17 अक्टूबर 1961 का दिन था जब पेरिस में रहने वाले लगभग 30,000 अल्जीरियाई अपने देश के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक नीतियों का विरोध करने के लिए सड़कों पर निकल आए। पेरिस के तत्कालीन गवर्नर मॉरिस पापोन ने फ्रांसीसी पुलिस और सेना को प्रदर्शनकारियों पर हमला कर देने का आदेश दे दिया। पेरिस में नागरिकों की आंखों के सामने सैकड़ों लोगों को गोली मार दी गई। इस क्रूर हमले में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और कुछ को प्रसिद्ध सीन नदी में डुबो दिया गया। ये वही नदी थी जिसे हर कोई प्यार के प्रतीक के रूप में जानता है और हर दिन सैकड़ों प्रेमी एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए अपने प्यार के ताले की चाबी उसके हवाले करते हैं। 2021 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रां ने सीन नदी में डूबने या मरने वाले पीड़ितों की याद में आयोजित सभा में भाग लिया। उन्होंने पेरिस में अल्जीरियाई नागरिकों के घातक दमन को अक्षम्य बताया और एक आधिकारिक बयान में इस घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, फ्रांस अपने इतिहास को खुले दिल से देखता है और अपनी मान्यता प्राप्त जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है, यानी उन अपराधों को स्वीकार करता है जिन्हें पेरिस ने अब तक नज़रअंदाज किया है। अफ्रीका में कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नस्लवाद विरोधी संगठनों का मानना है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति का बयान एक कदम उठाने के बराबर है, हालांकि उनका कहना है कि ये अपर्याप्त है। अल्जीरिया में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के इतिहास पर एक नज़र डालने से ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये माफ़ी क्यों पर्याप्त नहीं है। वर्षों तक इनकार के बाद आखिरकार फ्रांसीसी जांच विभागों ने ऐसा दस्तावेज जारी किए जिनमें अल्जीरिया में फ्रांसीसी अधिकारियों के अपराधों के आंकड़े पेश किए गए हैं। ये दस्तावेज उस दौर से संबंधित हैं जब अल्जीरिया फ्रांस का उपनिवेश था। ये दौर 1830 से शुरू हुआ और 1926 में अल्जीरिया की आज़ादी तक जारी रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में निर्दोष बच्चे, महिलाएं और पुरुष उपनिवेशवादियों के जुल्म की भेंट चढ़ गए और उन्हें यातनाएं और निर्वासन सहना पड़ा। अल्जीरिया में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जिन्हें याद करके हर स्वतंत्र मनुष्य दुखी हो जाता है और उसका अस्तित्व पीड़ा और क्रोध की भावना से जल उठता है। ১৯৪০ में जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था, जर्मनी ने फ्रांस के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त फ्रांसीसियों ने अल्जीरियाइयों से मदद की गुहार लगाई और वचन दिया कि अगर फ्रांस जर्मनों के कब्जे से आज़ाद हो जाएगा तो वो उनके देश से निकल जाएंगे और उसकी आज़ादी को मान्यता प्रदान करेंगे। इसके बाद अल्जीरियाइयों ने युद्ध में फ्रांस का साथ देना शुरू कर दिया और फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभाला। انہی الجیریائی سینکوں میں وہ لڑکا بھی شامل تھا جس کے بارے میں سبھی سوچتے تھے کہ وہ اپنے پتا کی طرح کسان بنے گا۔ لیکن اس دور کے حالات اس کے پتا کے زمانے سے کافی الگ تھے، جس کے کارن اسے لڑائی کے مورچے پر جانا پڑا اور اس نے 28 سال کی عمر میں اپنے دیش کی آزادی کے لیے بہت کٹھنائیوں کو سہن کیا۔ مونٹے کیسینو کی لڑائی میں اس کی بہادری کے کارن فرانسیسی راشٹرپتی جنرل ڈی گال نے اسے بہادری کے پدک سے سمانت کیا تھا۔ 1944 میں جس طرح فرانسیسی نازی شاسن سے اپنی آزادی کا جشن منا رہے تھے، اسی پرکار الجیریائی لوگ بھی سڑکوں پر اتر آئے اور فرانس کے وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی آزادی کا جشن منانے لگے۔ الجیریائی جھنڈا ان کے ہاتھوں میں تھا اور وہ آزادی کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس بیچ فرانسیسی سینکوں نے سڑکوں پر جشن منانے والوں پر حملہ کر دیا اور ان پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ الجیریائی لوگوں کے بلیدان کے بدلے فرانس کی پرتکریا ایک بڑے پیمانے پر نرسنہار تھی۔ ستیف اور خراتا شہروں میں 45,000 الجیریائی ناگرکوں کی ہتیا کر دی گئی اور لاکھوں لوگ گھائل ہوئے۔ فرانسیسیوں نے الجیریائی گاؤں کو نشٹ کر دیا اور گھروں کو جلا دیا۔ پراپت آنکڑوں کے انوسار اس گھٹنا میں مرنے والوں کی سنکھیا 70,000 تک تھی۔ فرانسیسی سرکاریں اس اپرادھ پر ہمیشہ پردہ ڈالتی رہیں۔ اوپنویشک یگ کے سب سے بھیانک اپرادھوں میں وہ پرماڑو پریکشن شامل ہیں جو فرانس نے 1960 اور 1966 کے بیچ الجیریائی ریگستان میں کیے تھے۔ الجیریائی ملٹری میگزین نے 2010 میں اس اپرادھ کا وورن پرکاشت کیا تھا۔ اس وورن کے مطابق اپنے پہلے پرماڑو پریکشن میں فرانس نے 150 الجیریائی راجنیتک قیدیوں کو لیب کے چوہوں کے روپ میں پرماڑو پریکشن کھیتر میں استمبھوں سے باندھ دیا تھا تاکہ انسانوں پر پرماڑو وکرن کے پربھاؤں کا ادھیئن کر سکے۔ اس پریوگ کے بعد جنرل ڈی گال نے اس کے کریانوین کے لیے ذمہ دار لوگوں کے نام پتر میں لکھا، فرانس کی جے ہو۔ فرانس کا پہلا پرماڑو وسفوٹ، جسے بلو ریڈ پریکشن کے نام سے جانا جاتا ہے، فرانس کے تتکالین راشٹرپتی چارلز ڈی گال کی پرتیکش دیکھ ریکھ میں کیا گیا تھا۔ اس بم کی وسفوٹک شکتی لٹل بوائے پرماڑو بم کی شکتی سے 5 گنا زیادہ تھی، جسے امریکہ نے ہیروشیما کے نواسیوں پر گرایا تھا۔ اپنے پرماڑو پریکشن کے بعد فرانس نے ایک مانچتر جاری کیا جس میں ریڈیو دھرمی وکرن سے دوشت کھیتر کو درشایا گیا تھا۔ اس مانچتر کے انوسار ایک چھوٹا اور سیمت کھیتر ریڈیو دھرمی دوشت تھا، لیکن 2013 میں واستوک مانچتر پرکاشت کیا گیا جس میں خلاصہ ہوا کہ افریقہ کے ساحل علاقے سے لے کر پشچم اور مدھیہ افریقی علاقے تک دوشت کھیتروں میں شامل تھے۔ دستاویزوں کے انوسار پرماڑو وکرن پریکشن کے 24 گھنٹے بعد مالی تک، جبکہ سینیگل، چاڈ، مدھ افریقی گڑراجیہ اور موریٹانیا تک 4 دن میں پہنچ گیا۔ فرانسیسیوں نے جو سوئم کو گرو سے یورپ کے ہردے میں سبھیتا اور سنسکرتی کا کیندر بتاتے ہیں، ان اپرادھوں کے بارے میں کبھی کوئی کھیت پرکٹ نہیں کیا۔ انہوں نے نہ صرف معافی نہیں مانگی بلکہ انہوں نے 18,000 الجیریائی ناگرکوں کی کھوپڑیوں کو پیرس کے ایک سنگرہالے میں گرو سے پردرشت کیا۔ فرانسیسی سرکار دوارا حال ہی میں جاری کی گئی رپورٹ مہتوپورن آنکڑوں اور تتھیوں کی اور اشارہ کرتی ہے جو پہلے جنتا کے لیے ویاپک روپ سے اپلبدھ نہیں تھی۔ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ الجیریا میں 132 ورشوں کی فرانسیسی اوپنویشک اپستھتی کے دوران مانواधिकारوں کا بڑے پیمانے پر الگھن کیا گیا اور اس دیش کو بھاری آرتھک اور سانسکرتک نقصان اٹھانا پڑا۔ کچھ انومانوں کے انوسار الجیریائی سوتنترتا سنگرام کے دوران کم سے کم 400,000 سے لے کر 1,500,000 تک لوگ مارے گئے تھے۔ پورے اوپنویشک کال میں 6.5 ملین لوگوں یعنی 65,00,000 لوگوں کی موت ہوئی تھی، جن میں یدھ، نرواسن اور سواستھیہ سویدھاؤں کے ابھاؤ اور بھکمری سے مرنے والے لوگ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 2 ملین سے زیادہ الجیریائی ناگرکوں کو ان کے وطن سے بے دخل کر دیا گیا اور انہیں استھائی شیوروں یا پڑوسی دیشوں میں بسایا گیا۔ ایک جبرن پلائن جس کا پربھاؤ الجیریائی لوگوں کی ورتمان پیڑھیوں پر ابھی بھی دکھائی دیتا ہے۔ آپ کی رائے میں کیا فرانسیسی راشٹرپتی میکران دوارا سنویدنا پرکٹ کرنے سے یہ سارا درد ایک بار میں کم ہو جائے گا اور اسے اس راشٹر کی کڑوی یادوں سے مٹا دیا جائے گا؟ अल्जीरिया में फ्रांस के अपराधों से तंग आकर अल्जीरियाई लोगों ने आज़ादी प्राप्त करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया, जिसे समकालीन इतिहास में उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई के ऐतिहासिक आदर्शों और सुनहरे अवसरों में से एक के रूप में जाना जाता है। ये क्रांति जो सैन्य, राजनीतिक, कूटनीतिक और सांस्कृतिक संघर्षों का संयोजन थी, फरार की एक घटना से शुरू हुई। अहमद बिन बिल्ला का फ्रांसीसी जेल से भागना। अहमद एक ऐसे किसान थे जिन्हें 28 साल की उम्र में फ्रांसीसी पदक से सम्मानित किया गया था, लेकिन जब फ्रांसीसियों ने उनके बलिदान का जवाब उनके देश के निर्दोष लोगों का नरसंहार करके दिया, तो उन्हें एहसास हुआ कि आज़ादी का एकमात्र रास्ता संघर्ष करना है। इससे पहले अब्दुल कादिर अल्जीरियाई जैसे नेताओं ने सशस्त्र प्रतिरोध शुरू किया और फ्रांसीसी सेना के खिलाफ एक लंबे संघर्ष की बुनियाद डाली। हालांकि संघर्षकर्ताओं के बेमिसाल साहस के बावजूद ये संघर्ष आधुनिक हथियारों से लैस फ्रांसीसी सेना के सामने सफल नहीं हो सका था। लोकप्रिय संघर्ष समूहों के बिखराव और संघर्षकर्ताओं के सामने कोई मॉडल नहीं होने के कारण वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके, लेकिन इन असफलताओं ने लोगों के दिलों में क्रांति की आग को और भड़का दिया। प्रतिरोधकर्ताओं की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही थी। इनमें से एक गुट की कमान अहमद के हाथों में थी। उन्होंने अपने समूह का नाम हिज्ब-उश-शबाब रखा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अहमद बिन बिल्ला अल्जीरिया लौट आए और अपने देश को फ्रांसीसी उपनिवेशवाद से मुक्त कराने के लिए 5 साल तक जी जान से लड़ते रहे। 1950 में उन्हें फ्रांसीसी सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 2 साल बाद अपने दोस्तों की मदद से वे जेल से भाग निकले और गुप्त रूप से फ्रांस और स्विट्जरलैंड और वहां से मिस्र की यात्रा करने में सफल रहे। उसके बाद उन्होंने देश और विदेश में अल्जीरियाई संघर्षकर्ताओं को संगठित करना शुरू कर दिया और फ्रांसीसी सेना के खिलाफ एक व्यापक संघर्ष शुरू कर दिया। अहमद और उनके साथियों को अल्जीरियाई राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की स्थापना में 2 साल लगे। अहमद बिन बिल्ला के नेतृत्व में यह आंदोलन, जिसे संक्षिप्त रूप से FLN कहा गया, शीघ्र ही लोकप्रिय प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। उपकरणों और प्रशिक्षित बलों की कमी के बावजूद अल्जीरियाई लड़ाके आज़ादी में दृढ़ विश्वास रखते थे और उन्होंने फ्रांसीसी सेना के खिलाफ दिलो जान से संघर्ष शुरू कर दिया। ये संघर्ष न सिर्फ युद्ध के मैदान में बल्कि कूटनीति के क्षेत्र में भी जारी रहा। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने छोटे और ज़मीनी स्तर के संघर्ष समूहों को एक छतरी के नीचे एकजुट किया और इसके नेता विभिन्न विश्व ब्लॉकों और स्वतंत्र देशों से महत्वपूर्ण कूटनीतिक समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। अहमद बिन बिल्ला संघर्ष के शुरुआती दिनों में एक फील्ड कमांडर के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। 1956 में उन्हें दूसरी बार फ्रांस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इस घटना ने न सिर्फ उन्हें सैन्य और राजनीतिक समीकरणों से दूर नहीं किया, बल्कि अल्जीरियाई लोग उन्हें प्रतिरोध के नेता के रूप में जानने लगे। वो 1962 तक जेल में रहे, जो कि अल्जीरिया की आज़ादी का साल था। रिहाई के बाद उन्हें अल्जीरिया का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति चुना गया। बिन बिल्ला की नई सरकार ने नष्ट हो चुके बुनियादी ढांचे की मरम्मत करने, आर्थिक विकास को गति देने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से उन लोगों में राष्ट्रीय आत्मविश्वास बहाल करने का प्रयास किया जो वर्षों से उपनिवेशवाद के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। हालांकि अल्जीरिया के चेहरे पर फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के कहर के दाग इतने गहरे थे कि वो आसानी से मिटने वाले नहीं थे। उपनिवेशवाद किसी राष्ट्र को आर्थिक और राजनीतिक रूप से पीछे ढकेलने तक ही सीमित नहीं है। अल्जीरिया में घटना संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान से भी जुड़ी हुई है। अल्जीरियाई समाज पर उपनिवेशवाद का दीर्घकालिक प्रभाव काफ़ी घातक रहा है। 19वीं सदी की शुरुआत से फ्रांस ने उपजाऊ भूमि, अधिग्रहण, खनिजों का दोहन और सख्त कर प्रणाली लागू करके अल्जीरिया के पारंपरिक आर्थिक संरचना को बदल दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि आज़ादी के बाद अल्जीरियाई राजनेताओं को एक ऐसी अर्थव्यवस्था का सामना करना पड़ा जो फ्रांसीसी प्रणाली पर व्यापक रूप से निर्भर थी और उसमें आवश्यक आत्मनिर्भरता का अभाव था। उदाहरण के लिए, अधिकांश रेल और सड़क संरचना को सिर्फ भूमध्य सागरीय बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसे घरेलू आर्थिक विकास के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। इस तरह की संरचना ने निश्चित रूप से आगामी देशों में आर्थिक विकास प्रक्रिया को बाधित किया। इसके अलावा औपनिवेशिक काल के दौरान फ्रांस ने एक ऐसी नीति अपनाई जिसे अल्जीरिया का फ्रांसीकरण कहा जाता है। प्रशासनिक नौकर शाही स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों में फ्रेंच भाषा को बढ़ावा दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप आज अल्जीरियाई समाज का एक बड़ा हिस्सा अरबी और बर्बर भाषाओं के साथ फ्रेंच भाषा को भी अपनी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा मानता है। हालांकि अल्जीरियाई लोगों ने अपनी मूल संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि फ्रांसीसी भाषा और संस्कृति के निशान अभी भी काफ़ी गहरे हैं और कई मामलों में शिक्षित शहरी वर्ग फ्रेंच को वैज्ञानिक और आर्थिक क्षेत्र में आधिकारिक भाषा मानता है। अहमद बिन बिल्ला की सरकार सिर्फ 2 साल चली। उनके रक्षा मंत्री हुवारी बूमद्दीन ने उनके खिलाफ तख्ता पलट कर दिया और अहमद को एक सैन्य बैरक में कैद कर दिया। उनके कट्टर विरोधियों में से एक कट्टर पंथी माओवादी जोहरा सलामी थी। सलामी लगातार बिन बिल्ला की सरकार के खिलाफ लेख लिखती रहीं और उनकी कड़ी आलोचना करती रहीं, लेकिन आखिरकार इन 2 कट्टर विरोधियों में प्यार हो गया और 1971 में उन्होंने शादी कर ली। बिन बिल्ला की सरकार के खिलाफ अपनी आलोचनाओं और हमलों के प्रायश्चित के लिए जोहरा मिशेल सलामी ने अपने जीवन के 10 साल उनके साथ एक सैन्य छावनी की जेल में बिताए। बिन बिल्ला को अंततः 1981 में जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन पूर्ण आज़ादी मिलने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए फिर से घर में नज़रबंद कर दिया गया। इस प्रकार 15 वर्ष की आयु से लेकर 96 साल की उम्र तक बिन बिल्ला या तो युवा आंदोलनकारियों को संगठित करते रहे या कब्जा करने वाली सेना के खिलाफ लड़ते रहे। इसके अलावा उन्होंने दुश्मनों और फिर अपनों के हाथों कैद और निर्वासन का दंश झेला। अपने देश की आज़ादी के बाद उन्होंने गुलाम बनाए गए राष्ट्रों को आज़ाद कराने के लिए राजनीतिक मोर्चे पर अपना संघर्ष जारी रखा। अंततः 2012 में अल्जीरिया में अपने घर में उन्होंने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, ये पॉडकास्ट जो आपने सुना रेडियो हिंदी द्वारा तैयार किया गया था। अगर आप और भी दिलचस्प विषयों पर पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi को विजिट कर सकते हैं।